इधर दिन उठाइए। वेरी हैप्पी बर्थडे, बहुत ही अच्छा।
శ్రీల ప్రభుపాదకి జై, శ్రీల గురుదేవుకి
జై,
అనంత కోటి వైష్ణవులకి
జై।
वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर
राशि
Thank you.
ते वासुदेवाय
Yeah. जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद
प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर
श्री अद्वैत गदाधर
शिवासादि गौर भक्तवृंद
शिवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे राम
हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा।
तो हम उपस्थित सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे बड़े भाई जयेश रामकृष्ण गुरु के प्रति, जिन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं यहाँ पर आके आपका संग लाभ प्राप्त करूँ। तो इसके लिए मुझे बड़ा ही सौभाग्य मैं इसको समझता हूँ कि मुझे एक बार फिर से हम एग्जैक्टली एक साल पहले 365 दिन पहले यहाँ पर आए थे और एक साल के बाद वापस यहाँ पर आ रहे हैं। तो बड़ा ही खुशी हो रही है आप सबके बहुत अच्छे दिव्य जो दर्शन मैं कर पा रहा हूँ। और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ राधा भाव भोजी का भी, जो अभी दूसरे प्रोग्राम में है, और मेरे समस्त जो वरिष्ठ भक्तगण बैठे हुए हैं प्रभु और अन्य सभी, जिनका मैं हर किसी का मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और इन सभी के सामने मेरे बोलने की कोई योग्यता नहीं है, और ये बड़ा ही उद्दंडता का प्रदर्शन है कि मेरे सामने इतने वरिष्ठ भक्त जो भक्ति में इतने आगे हैं वो बैठे हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि कई बार जब टीचर जब पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को स्टेज पे बुलाते हैं और बोलते हैं बोलो क्या पढ़ाया मैंने बताओ बोलो, तो इस तरह से बताते हैं। तो जो कुछ मैंने इन्हीं से सीखा है वो यहाँ पर दोहराने का प्रयत्न करूँगा। और रामकृष्ण प्रभु ने मुझसे कहा था कि अभी हमारा बड़ा ही सौभाग्य था पिछले युद्ध की छुट्टियों में हमारे बीच हृदय गौरांग प्रभु और हृदय कृष्ण चैतन्य प्रभु आए थे। तो उन्होंने जो कुछ भी अमृत तुल्य सागर की जो वर्षा की थी उसमें से कुछ बूंद आपके सामने प्रसारित करने का प्रयत्न करेंगे। तो आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके मैं कुछ दो शब्द कहने की भरोसा रखता हूँ। और मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ परम पूज्य श्री विजयपता का स्वामी महाराज, जो भी पिछले शनिवार आए थे और भगवान की असीम अनुकंपा से मुझे काफी अच्छा संग मेरा भी प्राप्त हुआ, महाराज ने काफी कृपा दी थी। और परम पूज्य श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज, जिन्होंने यहाँ पर इस अरब देश में, इस इस्लामिक देश में इस तरह धारा का प्रभाव किया है। तो हम जब भी इस तरह के कोई सत्संग कार्यक्रम में आते हैं तो मैं अपने आप को याद दिलाने के लिए हमेशा कहता हूँ कि जब भी हम इस तरह के सत्संग में आए तो हमारा मूड कैसा होना चाहिए। हमारा मूड उस तरह होना चाहिए जो कि एक पेशेंट का होता है जब वो अस्पताल में जाता है, एक मरीज जब अस्पताल में जाता है, और ना कि उस व्यक्ति का जो होटल में जाने का प्रयास करता है। तो एक व्यक्ति जो होटल में जाता है वो क्यों जाता है? मनोरंजन के लिए। तो वो जानता है कि मैंने कुछ पैसे दिए हैं और इससे मुझे मनोरंजन प्राप्त होगा। लेकिन हम जब सत्संग में आते हैं तो हमारा क्या ध्येय है? हमारा ध्येय है शुद्धिकरण, मनोरंजन नहीं, हम शुद्धिकरण के लिए आते हैं। और जो मरीज होता है, जो पेशेंट है, वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं बीमारी की अवस्था में हूँ और मुझे अस्पताल की, डॉक्टर की और दवाइयों की जरूरत है, और इनका संग प्राप्त करके ही मैं ठीक हो पाऊंगा। तो हमारा जो इस्कॉन इंस्टीट्यूशन है ये एक बहुत ही बड़ा अस्पताल है जिसके अंदर सभी लोग जो भौतिक त्रिविध ताप से तड़प रहे हैं उनको ठीक करने के लिए श्री प्रभुपाद जी ने बनाया है। और श्रील प्रभुपाद और दूसरे जो वैष्णव है वह सब महान डॉक्टर की तरह है जो इलाज करते हैं, और इलाज के रूप में उन्होंने हमें बहुत बड़ी औषधि दी है जिससे हम भव औषधि से बच सकें। और वह औषधि है
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
तो ये हम कथा कर रहे हैं, इसके दो उद्देश्य है कि पहले तो हम अपने चित्त का शुद्धिकरण करने के लिए और भगवान श्री कृष्ण के चित्त को आकर्षित करने के लिए, अन्यथा हमारा कथा करने का और कोई तात्पर्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की असीम अनुकंपा वश आज हम यहाँ पर बैठकर इस तरह का कुछ चर्चा करने का प्रयास कर पा रहे हैं, तो ये उन्हीं की अनुकंपा है। और जैसे कि वासुदेव घोष एक भजन गाते हैं, यदि गौर न होई तो तबे की होई तो केनो ने धरितान दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाने सोचे। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो क्या होता हमको, जैसे हमने अभी दो दिन पहले राधाष्टमी का महामहोत्सव मनाया तो राधा रानी के बारे में हमें कौन बताता था। तो उसी तरह भक्त जो होता है वो एक स्टेप और आगे जाता और कहता यदि प्रभुपाद ना हो तो तबे की होई तो, अगर प्रभुपाद जी ना होते तो क्या होता, क्या हम यहाँ बैठे होते और इस तरह से हम चर्चा कर रहे होते। तो ये प्रभुपाद जी का बहुत बड़ी अनुकंपा है कि उन्होंने, तो जो प्रभुपाद जी की पुस्तकों में लिखा है और जो भक्तों से सुना है वही कुछ वो शब्द दोहराने का प्रयास करेंगे, तो यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो अभी वारांग प्रभु यहाँ पर आए थे और उन्होंने काफी अच्छी चर्चा की और काफी जो आध्यात्मिक विषय के बारे में बहुत ही उन्होंने कुछ बताया, हम कोशिश करेंगे उसमें से हम अगर कुछ कह पाए। पर मैं जानता हूँ कि यहाँ पर भगवद गीता का कथन होता है, तो भगवद गीता जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। भगवद गीता को सारे वेदों का सार माना गया है और श्रीपाद शंकराचार्य ने भी अपनी गीता महात्म्य में लिखा है, सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महा। उन्होंने कहा है कि जो सारे हमारे वेद शास्त्र उपनिषद पुराण आदि जो है ये गाय के तुल्य है, ये गाय के समान है और गाय का जो एसेंस होता है वो क्या होता है, दूध मिल्क। तो ये जो भगवद गीता है ये इस हमारे वैदिक वांग्मय की एक गांव के तुल्य है, गाय के समान है। और गाय का जब दूध निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एक घोड़ा चाहिए जो उसको गाय को मिल्क में जो उसको गाय को दूहेगा, फिर गाय का दूध निकालने के लिए बछड़े को छोड़ना पड़ता है, तो बछड़ा जाता है तब गाय अपना दूध रिलीज करती है और तब हम इस दूध का आस्वादन ले सकते हैं। तो ये बताते हैं कि दुग्धा गोपाल नंदना, ये जो हमारी गाय है वेद की, इसके दुग्धा कौन है, गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण है। और पार्थो वत्स, वत्स मतलब होता है बछड़ा और पार्थ मतलब अर्जुन, तो अर्जुन को बछड़े के रूप में प्रयुक्त किया गया है। और इसमें से ये जो अमृत तुल्य दूध निकल रहा है वे भगवान सभी योगी ज्ञानी और उनके भक्तों को पिला रहे हैं, तो इतनी महानता है। और आगे वो श्रीपाद शंकराचार्य जी काफी अच्छे श्लोक लिखे हैं, उसमें एक और कहते हैं कि गंगा में तो आपको स्नान करने के बाद आपका शुद्धिकरण होता है, लेकिन भगवद गीता जो है उसको अगर कोई एक बार पढ़ ले तो उसका असीम शुद्धिकरण हो जाता है, उस व्यक्ति की बात ही क्या जो रोज भगवद गीता में स्नान करता हो। तो इसलिए भगवद गीता पर बोलना, भगवद गीता पढ़ना, ये सब हमारे भक्ति का परिचायक है। और ये पुस्तक है जो भगवान को और भगवान के भक्तों को बहुत प्रिय है, और इसीलिए प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया है भगवद गीता के पठन पर और उसके वितरण पर भी। कभी गौरांग प्रभु बता रहे थे कि वो बोले कि भगवद गीता का हमें वितरण करना चाहिए, मेरे को याद है लास्ट टाइम जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बताया था कि तीन चीज का वितरण करना चाहिए, हरिनाम का वितरण करना चाहिए, प्रसाद का वितरण करना चाहिए और ग्रंथों का वितरण करना चाहिए। तो एक बार गौरांग प्रभु इस तरह भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और एक व्यक्ति बम्बई में, तो एक व्यक्ति उनसे आके बोला ये क्या है प्रभु जी, आप भगवद गीता दे रहे हो और पैसा ले रहे हो, भगवद गीता तो आपको फोकट में देनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया था फ्री में दिया था, उसका कोई पैसा चार्ज नहीं किया था। तो गौरांग प्रभु उसको बोले कि ठीक है, भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को कहाँ दिया था, तो बोला कुरुक्षेत्र में दिया था। तो कुरुक्षेत्र में वो ज्ञान दिया था
और ये बम्बई है, 70 रुपया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है भगवत गीता वहां से यहाँ लाने का। तो कई भक्त ऐसे हैं जो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाते हैं, और ऐसा नहीं कि कोई भी रेड कार्पेट आपको लगा के आपका स्वागत करके आएगा कि आ जाओ भगवत गीता। कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो बताते हैं कि कई बार वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते थे तो घर के घंटे बजाते थे, लोग छेद में से देख लेते थे कौन आया, तो एक अजीब तरह का प्राणी दिखाई देता उनको, अरे कोई आ गया इसका वाला, तो दरवाजा नहीं खोलते थे, अंदर से बोलते है हमारे पास सारी भगवत गीता है, हमको नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या टेक्निक अपनाई कि साथ में पहले बाल वाले लड़के को लेके जाते थे कॉलेज के, घंटी बजाता था वो दिखता था, जैसे दरवाजा खुलता अंदर घुस जाते, बोले आप कहां से आ गए, तो बोले नहीं आप अलाउ ही नहीं करोगे। तो कैसे कैसे एक भक्त थे जो पुणे में कहीं पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो वो आर्मी से आए थे, आर्मी से आके भक्त बन गए थे, काफी हट्टे कट्टे थे एकदम, तो खड़े थे और वहां पर जो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बहुत सारे भक्तों के साथ खड़े थे, तो एक गुंडा जैसा लोकल गुंडा आ गया उनको, और उसको देख के सारे भक्त डर गए, सब जानते थे, तो बोला कि इसके साथ हम कोई पंगा नहीं लेंगे। तो वो आया और उसने आके कहा कि अरे तुम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो यहाँ पर, किसकी इजाजत लेकर, किसकी परमिशन लिए? तो वो जो भक्त था आर्मी वाला थोड़ा स्ट्रांग था, उसने कहा अरे परमिशन की क्या जरूरत है, ये भगवत गीता भगवान ने कही है और सारी भूमि भोपाल की सब कुछ भगवान का ही है। तो वो आके और काफी उनको उठपटांग बोलने लगा, तो इस भक्त ने क्या किया, स्ट्रांग थे, एक थप्पड़ लगा दिया धाड़ करके, तो 3 फुट पीछे जाके गिर गए, और उठ के खड़ा हुआ बोला तूने मुझे मारा, बोला हाँ मारा और तुम क्या, तो भाग गया। तो दूसरे भक्त थे बोले प्रभु जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, हमारा प्रणादपि सुनी चाहिए ना तरुणपि सहिष्णु, ये आप क्या कर रहे हो? तो बोले कि नहीं बराबर किया। तो दूसरी टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा था, वो भक्त वापिस, वो गुंडा वापिस आया और 6 लोगों को साथ में लेके आया, तो ये दूसरे भक्त खड़े थे वो डर गए, बोले अरे अभी तो कुछ तो बड़ा हो जाएगा। तो एक भक्त ने कहा कि प्रभु जी मेरी सेवा है मंदिर के अंदर, मैं जा रहा हूँ। दूसरे ने कहा मुझे कपड़े धोने में जा रहा हूँ। सब भाग गए, और ये प्रभु भी अंदर से तो डर रहे थे कि क्या है, लेकिन ऊपर से बोले देख लेंगे क्या हो रहा है। तो इस तरह से खड़े थे और वो गुंडा आके बोलने लगा आपने मुझे मारा? तो उसने कहा हाँ मैंने ही था तुमको मारा। तो फिर जेब में से 500 रुपया निकाला, बोला 6 भगवद गीता ले लो। अचंभा आ गए, बोले अरे 6 भगवद गीता मांग रहा है, तो मन में सोचे एक ही मारा 6 मांग रहा है, 2 मारा होता तो मारा लेता। तो इस तरह से वो भगवदगीता का वितरण किए। तो इससे हमें ये शिक्षा नहीं लेनी चाहिए कि हम भी किसी को मार दे, लेकिन ऐसा है कि कभी जब हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो कोई आसान नहीं होता है। एक भक्त बांग्लादेश में बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, और वो फॉरेन का था, और वैष्णव वेशभूषा पहना था, तिलक विलक लगा के खड़ा था और बुक टेबल पर खड़ा था, और वहां पर इस तरह के कई जो लोग है वो आ जाते, तो बांग्लादेश में आ गए अपने पूरे मुंह पे पट्टी वट्टी लगाकर और बंदूक लेके आ गए, और उसने देखा कि ये कोई अंग्रेज है लेकिन कैसी वेशभूषा में बैठ के कर रहा है, तो बड़ा अजीब लगा, और उसको जाके उसने दिखाया और बोला तुम हिंदू हो क्या, और बंदूक एकदम सीधा तान दिया उसके सिर के ऊपर। तो प्रभु जी को कुछ समझ में आया नहीं, थोड़ा सा फिलोसॉफी उन्होंने पढ़ा था, नए नए आए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने क्या सीखा है, तो उसने कहा मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं गोपी भ्रजु पद कमल और दास दास दासानुदास। तो ये जो आदमी था बंदूक लेके खड़ा था थोड़ा बिल्डर हो गया, बोला अरे दास दास दासानुदास, बोला बंगाल में सब लोगों की ऐसी सरनेम होती है दास, मनोज दास, अरुण दास, अनिल दास, तो सोचा एक दास तो देखा था, ये दास दास दासानुदास ये कोई बहुत बड़ा आदमी लगता है, छोड़ के चला गया। तो देखो हमारी फिलोसॉफी हमको कैसे बचाती है। तो एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि आपके जो भक्त लोग हैं ये खाली बुक डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, खाली बस प्रसाद खाते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते गाते आराम करते हैं, कुछ काम क्यों नहीं करते? प्रभुपाद ने कहा कभी देखा है रईस आदमी का बेटा काम करते हुए? और कोई आके बोला प्रभुपाद को कह रहे प्रभुपाद जी आपके डिसाइपल्स जो है वो हमेशा जहां देखो वहां खाली बस बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगे रहते हैं, एयरपोर्ट पे जाओ तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पीछे आ जाते हैं, टैक्सी में जाओ तो वहां पीछे आ जाते हैं, हर जगह पीछे देखो देखो तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ जाते हैं, दे आर लाइक बुक वर्म्स, ऐसा कहा प्रभुपाद जी को एक जन ने, कि दे आर लाइक बुक वर्म्स, के बस किताबी कीड़े हैं, किताब बेचते रहते हैं, किताब बेचते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा इट इज बेटर टू बिकम बुक वर्म रादर देन बिकमिंग स्टूल वर्म। तो बोला अगर आप नहीं बोलोगे तो विष्ठा के कीड़े बन जाओगे। तो ये जो सारा ज्ञान है ये हमें भगवद गीता के अंदर प्राप्त होता है कि मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में क्या भेद है, ये एसेंशियली भगवत गीता हमें बताती है। तो गौरांग प्रभु बता रहे थे यहाँ पे जब आए थे कि भगवत गीता में जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये चार चीज के बारे में बताया गया है कि ये जो है ये हमारा रियल प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी को रियल प्रॉब्लम करना है तो उसके तीन तरीके हैं, दैट इट शुड बी कॉमन टू ऑल, नोबडी वांट्स इट एंड नोबडी कैन अवॉइड इट, कि सभी के समान रूप से होना चाहिए, कोई उसे चाहे नहीं और कोई उसे वापिस उसको टरका नहीं सके। तो ये जो चीज है ये भगवत गीता में लिखी है, भगवान ने आधी लाइन में बता दिया जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो ये इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना ये हमको भगवत गीता बताती है। तो एक जन आके रिपोर्टर प्रभुपाद से कहने लगा, प्रभुपाद व्हाई द डेथ रेट इन इंडिया इज इंक्रीजिंग, कि भारत में मृत्यु दर जो है वो क्यों बढ़ रही है। मतलब तो उसका कहने का तात्पर्य था कि भारत के अंदर कोई सुविधा नहीं है, दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, लोग मरे जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उससे कहा कि एज फार एज डेथ रेट इज कंसर्न इट इज सेम एवरीवेयर 100%। जहां तक मृत्यु का सवाल है वो सब जगह सेम है, सारे लोग मारे जाते हैं, ऐसा कोई बचा है क्या, क्योंकि मरेगा नहीं, सिकंदर भी मर गया था, तो जो पैदा हुआ है वो मरने ही वाला है। तो पशु जो है उनके लिए भगवान ने खाली क्या दिया है, देह धर्म दिया है, बहुत सिंपल कि देह धर्म में वो लगे हुए हैं, लेकिन मनुष्य के लिए भगवान ने कुछ और दिया है। तो पशु क्या करता है, पशु को आप देखो सुबह सुबह चरना शुरू कर देता है, गाय निकलती है अपने गौशाला से पूरे दिन भर चरते रहती है और चर चर के वापिस आती है गौशाला में, शाम को आप घास डालो तो वो भी खा लेगी, वो पूरे दिन खाते रहती है। और उसी तरह जो शेर होता है वो क्या करता है, मांस खाते रहता है, वो देखता है प्राणी को उसके पीछे भागता है, उसको मारता है, खा लेता है। तो गाय के लिए घास और शेर के लिए मांस, ये भगवान ने व्यवस्था की है कि कुछ ऐसे प्राणी है जो घास खाते हैं कच्चा और कुछ ऐसे प्राणी है जो मांस खाते हैं कच्चा। तो क्या मनुष्य कच्चा घास और कच्चा मांस खा सकता है, तो ये जो चीज है ये बनाई है उनके लिए। और अगर मनुष्य को कुछ खाना है चाहे वो घास हो चाहे मांस हो, तो उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले स्टोव का अरेंजमेंट करना पड़ता है, फिर स्टोव के बाद सिलेंडर लाना पड़ता है, फिर सिलेंडर का कनेक्शन ढूंढना पड़ता है, फिर कनेक्शन करने के बाद और फिर बाद में अलग अलग तरह से उसको चाकू लाने पड़ते हैं और छुरी वगैरह सब लाके और चीज को काटना पड़ता है, काट के धो के उसको पकाना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि पका दिया हो गया, वेटिंग पीरियड है थोड़ा, तो वेट करना पड़ता है उसको, और वेट करने के बाद और फिर इतनी मुसीबत के बाद तब जाके कहीं वो खा पाता है। और कितनी देर के लिए खाता है, सुबह ब्रेकफास्ट लेता है 10 मिनट में, लंच लेता है 10 मिनट में और डिनर लेता है 10 मिनट में, तो सारे दिन का जो कोटा है आधे घंटे में खलास। और पशु दिन भर खाते रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं और उनका कोटा खलास नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो है वो आहार निद्रा भय और मैथुन के लिए नहीं बने हैं। बंदर को देखोगे तो सुबह सुबह उड़ जाता है और सुबह सुबह बिजी हो जाता है, ये चीज उठाएगा इसका निरीक्षण करेगा, वो चीज उठाएगा उसका निरीक्षण करेगा। आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा इसका शेड्यूल बहुत टाइट है, बहुत जबरदस्त, मतलब इतना बिजी लगेगा कि जैसे आपके पास देखेगा भी नहीं कि क्या हो रहा है, अपने काम में लगा रहेगा। लेकिन बिजी काय के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, भय के लिए और मैथुन के लिए, ये चार चीज के लिए, आहार निद्रा भय और मैथुन, हम इस चार चीज को ही वो करते रहता है। लेकिन मनुष्य है वो क्या करता है, मनुष्य को जो है भगवान ने देह धर्म नहीं बनाया। जैसे जानवर जो है उनको नहाने की आवश्यकता नहीं है, आपने नहीं देखा कोई बिल्ली सुबह सुबह जाएगी और 6 बजे उठ के मंजन कर रही है और जाके नहाने के लिए लाइन में खड़ी है, नहीं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ऊपर पानी गिर गया तो ऐसा हिला के पानी साफ कर देगी। और आदमी को कितना टेंशन लेना पड़ता है, सुबह सुबह पानी नहीं आया 6 बजे तो अरे पानी नहीं आया ऑफिस कैसे जाऊं, तो इतना सारा कुछ उसको करना पड़ता है। जानवर लोग बिंदास घूम रहे हैं, कोई शर्म लाज लज्जा कुछ नहीं है, मनुष्य घूम सकता है क्या बिना कपड़े के? और हमको एक कपड़ा नहीं चाहिए, हमको बहुत सारे कपड़े चाहिए, रोज अलग अलग तरह के कपड़े चाहिए पहनने के लिए, मैचिंग करते हैं हम लोग अपने शूज के साथ, अपने बेल्ट के साथ, अपने शर्ट के साथ, कान के कुंडल के साथ, हर किसी के साथ हमारा मैचिंग चलता रहता है। और फिर गर्मी में अलग तरह के कपड़े चाहिए, सर्दी में अलग तरह के कपड़े चाहिए, अगर फॉरेन गए तो अलग तरह के कपड़े चाहिए, ऑफिस में अलग चाहिए, घर के अंदर मुंडू चाहिए, मतलब इतना सारा चीज हमको चाहिए, जानवरों को कुछ नहीं चाहिए, घूम रहे मस्ती से, बोलेंगे तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आराम से घूम रहे। और मनुष्य को कितना कुछ, घर के अंदर कमरे में किचन चाहिए पकाने के लिए, ये किचन जो है ये कमरा दूसरे कोई समाज के अंदर नहीं है। आप देखो कोई जानवर किचन में नहीं जाता है, मनुष्य जाता है और फिर खाते रहता है और खा के क्या करता है, बीमार पड़ता है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स वे में वो खाता है और कॉम्प्लेक्स बीमारियां होती है उसको। कभी हमने देखा है क्या कौआ है, वो बोल रहा है अरे यार आज मेरे को इन्फेक्शन हो गया, कैसी कैसी चीज खाता है कौवा, और इतनी सारी चीजें गंदी चीज खाता है, लेकिन कभी हमने नहीं सुना कौवे को इन्फेक्शन हुआ है। क्या चार कौवे साथ में बैठे बोले यार आज हम लोग को वायरल फीवर हो गया। कभी देखने को नहीं मिलता। बिल्ली कभी नहीं कहती कि मैं बीमार हूँ। मैं थोड़ा अगर बीमार हो भी गए तो एक दो दिन भूखा रहेंगे, घास फूस खाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन मनुष्य को बाप रे बाप, एक तो कॉम्प्लेक्स तरीके से खाएगा, कॉम्प्लेक्स बीमारियां होगी, उस बीमारी को दूर करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स खाएगा और फिर अस्पताल बनाना पड़ेगा उसके लिए, और इतने सारे साधन, इतनी मुसीबत। तो बताते हैं कि मन जानवरों को क्या है, खाना पीना सोना, बस खाली उतना हो जाए। इसलिए उनका देह धर्म बहुत सिंपल है, बहुत सामान्य है, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन मनुष्य का जो है वो देह धर्म बहुत जटिल है। देखो हमको खाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। मांस को क्या हम ऐसे ही छलांग मार के किसी के ऊपर खा सकते हैं क्या? उसको कोई और काटता है, कोई उसको साफ करता है, कोई उसको सजाता है, और फिर कोई उसको पकाता है। उसमें अनेक तरह के मसाले पड़ते हैं, कुकिंग स्पाइसिंग पता नहीं क्या क्या करते हैं, तब जाके खाते हैं। तो ये जो खाने का काम है इतना जटिल है, और पहनने का कितना जटिल है। कई बार माता जी लोग जाते हैं अपने दुकान के अंदर, पूरा दुकान निकाल देते हैं लेकिन एक साड़ी पसंद नहीं आती। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स करते हैं लेकिन कुछ चीज नहीं लेने को होता है, और पूरा एक दिन बर्बाद करके और फिर भी हम एक चीज खरीद नहीं सकते हैं, इतना सारा प्रॉब्लम। तो हमारा जो देह धर्म है भगवान ने बहुत जटिल बनाया है, और जानवरों का जो है बहुत आसान है, बस वो जो मिल गया खा लिया, जहां पे मन आया वह मैथुन कर लिया। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते, उसको बहुत कॉम्प्लेक्स वे में सोचना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके वो करता है। तो बताते हैं कि मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए ना तो स्नान है और ना ही कपड़े पहनने उनको, ना ही घर है, कुछ नहीं। जहां पे बंदर कहीं पे सो जाएगा, ना चीता कहीं पे सो जाएगा, वो घर नहीं बनाते। तो मनुष्य को इतने सारे प्रयत्न करने पड़ते। तो क्यों भगवान ने मनुष्य का जीवन इतना जटिल बनाया है, समझने का जो ये मुख्य मुद्दा ये है कि हमारा देह धर्म जो है वो बहुत जटिल है, जानवरों का बहुत सामान्य है। और हमारे लिए भगवान ने देह धर्म नहीं बनाया है, मनुष्य के लिए भगवान ने क्या बनाया है? भागवत धर्म। हमारे लिए मेन जो हमारा धर्म है वो भागवत धर्म है। भागवत धर्म हमारे लिए आसान है क्योंकि हम पुस्तकें पढ़ सकते हैं, कुत्ता पुस्तक नहीं पढ़ सकता, कुत्ता भगवत गीता नहीं पढ़ सकता, मनुष्य पढ़ सकता है। तो इसके लिए मनुष्य के लिए भगवान ने भागवत धर्म बनाया है कि आप भागवत धर्म का आश्रय लो और फिर आप भगवत धर्म जाओ। तो ये जो मनुष्य शरीर है ये जंक्शन के जैसा है। जैसे मैं बॉम्बे से हूं, तो बॉम्बे में क्या होता है कि एक बार आपकी गाड़ी छूट गई चर्च गेट से, तो दादर तक आपको सीधा ही जाना है, आप आगे पीछे नहीं जा सकते। मतलब या तो पीछे जाओ या फिर आगे ही जाओ, ठीक है। लेकिन एक बार आप दादर पे आ गए तो आप कह सकते हो दादर से आप करगर जा सकते हो, कसारा जा सकते हो, वीटी जा सकते हो, चर्चगेट जा सकते हो, और उड़न जा सकते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो वो जंक्शन है। तो एक बार हम दूसरी कोई भी पशु योनि में है तो स्ट्रेट लाइन है, सीधा एक के बाद एक के बाद एक आपको जाना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य जीवन जो है वो कैसा जंक्शन है, वो आपको चाहिए तो आप ऊपर भी जा सकते हो, आपको चाहिए आप नीचे भी जा सकते हो, आप अच्छे रास्ते पे जा सकते हो, बुरे रास्ते पे जा सकते हो। भगवान ने एकदम फ्री विल दिया है। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हारे लिए मैंने भागवत धर्म बनाया, भागवत का आश्रय लो, भगवत गीता का आश्रय लो और मेरे पास चले आओ। श्री कृष्ण भगवान की जय। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब मनुष्य पशु के समान हो जाता है और उतना ही परेशान होकर, और मानव शरीर के लिए अगर वो कार्य करते रहता है और उसी में लगा रहता है, तो क्या होता है कि वो जो मनुष्य से वो क्या होता है, पशु के जीवन पे आ जाता है। अगर हम लोग हमारा सारा कार्य जो है वो सिर्फ आहार निद्रा भय और मैथुन के लिए करेंगे तो कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए भगवान ने ये हमारे लिए नहीं बनाया है। तो भगवद गीता के अंदर ये सब जानकारी हमको मिलती है, जैसे ये आहार निद्रा भय मैथुन और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है, ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं। और भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, वो कहते हैं अर्जुन को कि तस्मात योगी भव अर्जुन, कि हे अर्जुन किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर आप योगी बनो। तो लोग इसका बड़ा गलत अर्थ निकालते हैं, वो बोलते हैं भगवान ने योगी बनने के लिए कहा है, तो मैं भी योग कर रहा हूं ना, तो कई लोग फिजिकल एक्सरसाइज करने लगते हैं, उसको योग बोलते हैं, बोलते हैं ये हमारा योगा है, योगा एक्सरसाइज, मैं सुबह योगा के लिए जाता हूं। कई लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं, कई लोग क्या क्या करते हैं और योग करने का करते हैं, लेकिन ये सब योग नहीं है। योग की परिभाषा वो है जो भगवान के साथ जोड़े। योग मतलब होता है धन जोड़ना। और कई बार क्या होता है कि लोगों ने कुछ सीरियल देखी है, उसके अंदर श्लोक पढ़ लिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो लोग बोलते हैं अरे देखो मैं तो कर्म योग करता हूँ, मैं रोज दफ्तर टाइम पे जाता हूँ, मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ और फाइलों में अपनी जान गवाता हूँ, और वहां पे जाके फाइल में उलझा रहता हूँ, अपना काम करता हूँ, शाम को आता हूँ टेलीविजन देखता हूँ सो जाता हूँ, मैं कर्मयोग कर रहा हूँ। पर ये कर्मयोग किधर है, ये तो सिर्फ कर्म है, योग नहीं है। योग तो तब होगा जब भगवान से जुड़ेंगे, तो जब भगवान से जुड़ेंगे तो कर्म योग शुरू होगा। लेकिन लोग बोलते हैं हम लोग कर्म योग कर रहे हैं, वैसे ही कोई लोग बोलते हैं हम ध्यान योग कर रहे हैं, वो ध्यान योग करते करते सो जाते हैं। एक बार प्रभुपाद को किसने आगे कहा, प्रभुपाद दे आर टीचिंग साइलेंट मेडिटेशन, प्रभुपाद से इट इज बोगस, दे आर सिटिंग आइडल डूइंग नथिंग स्नोरिंग एंड गोइंग टू स्लीप, दैट मेडिटेशन एवरी वन कैन डू, हर कोई कर सकता है। कोई आके प्रभुपाद को बोला प्रभुपाद दे आर टीचिंग ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, दे टीच हाउ टू लेविटेट, हाउ टू राइज, मतलब किस तरह से आपको उठना है, ऊपर उठना है वो बताते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं आफ्टर पेइंग सो मच व्हेन योर पॉकेट इज एम्प्टी यू फील लाइक नेचुरली यू लेविटेट, नेचुरली आप ऊपर आते हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, somebody came and told प्रभुपाद दे टीच अस हाउ टू फ्लाई, प्रभुपाद से इवन कॉकरोचेस फ्लाई, कॉकरोच भी उड़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि उड़ना कॉकरोच की तरह हमारे को या ऊपर उठना है, नहीं ऊपर उठना है किधर से, मैटर से ऊपर उठना है, मैट पे से नहीं। कि तो मैट पे से उड़ गए ऊपर लटक रहे हैं, नीचे भी नहीं है हवा में है। तो इसलिए कई लोग बोलते हैं ध्यान योग कर रहे हैं, कई लोग बोलते हैं हम लोग ज्ञान योग कर रहे हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब योग का कोई, तो जो योग इंद्रियों के द्वारा किया जाए वो है कर्म योग, जो योग मन के द्वारा किया जाए, जैसे इंद्रिय से मन बड़ा है ऐसा भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तो जो मन से किया जाए वो है ज्ञान योग, और मन से ऊपर बुद्धि है तो बुद्धि से जो योग किया जाए वो है ध्यान योग, और उसके बाद और उससे ऊपर है आत्मा, और आत्मा से जो किया जाए वो है भक्ति योग। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि इंद्रियाणि प्राहुर इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्यो परम मना मनस्तस्तु परबुद्धि योग बुद्धे परतस्तु सः, कि मतलब इंद्रियों से बड़ा मन है, मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के परे आत्मा है। तो जो भगवान को आत्मा से जोड़े वो सच्चा योग है एक्चुअली। तो कई बार हम देखते हैं कि चार प्रकार के योग का वर्णन भगवत गीता में भी आता है, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि भक्ति योग क्या है और क्यों भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तो कई बार कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि नहीं नहीं हम तुम्हारे प्रोग्राम में आते हैं तो तुम लोग कहते हो भक्ति योग बड़ा है, अरे हम लोग उस प्रोग्राम में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये योग बड़ा है, हम और तीसरे पंडाल में जाते हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं ज्ञान योग बड़ा है, आंख बंद करके एक लाइट के ऊपर मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान योग बड़ा है वो कहते हैं। तो क्योंकि आपके खेमे में आते हैं आप लोग ऐसा कह रहे हैं, तो हम लोग जहां जाते हैं सब लोग अपने अपने कहते हैं, और अगर हम लोग कुंभ मेले में जाएंगे तो खिचड़ी बन जाएगा उधर, सब तरह का योग जमा हो जाता है एक साथ, तो कैसे समझा जाए। तो कोई अगर आके कहेगा कि नहीं भक्ति योग क्यों सर्वश्रेष्ठ है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे उनको बताएंगे कि नहीं भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ योग है। नंबर वन, एक तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भक्तिया माम अभी जानाति, सिर्फ भक्ति से ही आप मुझे समझ सकते हो और किसी चीज से भगवान को नहीं समझा जा सकता है। तो हमारा आधार क्या है, हमारा आधार है गुरु, साधु और शास्त्र। शास्त्र हमें बताता है कि क्या क्या है। तो कई बार हमारी इच्छा होती है कि हम लोग जो कुछ करते हैं वो सर्वोत्तम करना चाहते हैं, नंबर वन, हर चीज के अंदर हम नंबर वन रहना चाहते हैं कि बस मैं नंबर वन बनूं हर चीज के अंदर। तो जब हम कोई योग करने के लिए आते हैं तो क्यों नहीं हम ऐसा सोचते कि हम भी नंबर वन रहे। तो पहले नंबर वन के लिए हमको जानना चाहिए कि नंबर वन हम कैसे बन सके। तो समझो अगर हमारे पास कोई धनराशि है, कोई अमाउंट है, कोई इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, तो उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे बताओ। अगर हमारे पास कुछ धनराशि है तो हम उसको वहां इन्वेस्ट करेंगे जहां पर हमको सबसे ज्यादा रिटर्न मिले, नहीं क्या। अगर कोई आपको 5% दे रहा है एफडी पर रेट, कोई आपको 6 दे रहा है, कोई आपको 8 दे रहा है, किधर जाएंगे, 8 वाले पे जाएंगे, अपना एफडी तोड़ के उधर जाएंगे। तो जहां पर अच्छा रिटर्न मिलेगा वहां पर हम धन लगाना चाहेंगे। तो इसके लिए भक्ति क्या है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिग रिटर्न। पहला चीज है कि छोटा सा पूंजी लगाओ और बहुत बड़ा रिटर्न हमको मिलेगा। तो योग जो है भक्ति योग, ये हम आत्मा के द्वारा परमात्मा को जानते हुए कर सकते हैं, और बाकी जो योग है वो सब निम्न स्तर पे, जैसे हमने अभी चर्चा की कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। तो दूसरे जो भी सारे हैं, जैसे भी अभी इंद्रियों की बात करते हैं कि इंद्रियों से अगर हमको योग करते हैं तो इंद्रियां हमारी जो है वो क्या करती है, अनुभव करती है, एक्सपीरियंस करती है। हमारी हर इंद्रियों का कोई ना कोई एक अनुभव होता है, जैसे आंख देखती है, कान सुनता है, मुंह बोलता है, जिह्वा आस्वादन करती है, इस तरह से हमारी सारी इंद्रियां है उससे हम किसी न किसी तरह का आस्वादन करते हैं। तो जैसे हम समझे होटल में गए, एक उदाहरण हम लेते हैं, और होटल में जाके हम देखते हैं, होटल का मेनू खोल के देखते हैं, तो उस मेनू में क्या देखते हैं हम, कि समोसा है, समोसा 5 दिरहम, ठीक है, इडली है 6 दिरहम, डोसा 10 दिरहम, पिज्जा 25 दिरहम, ऐसा एक मेनू खोल के हम पढ़ते हैं। तो बाद में कोई सोच सकता है कि यार समोसा खाने का 5 दिरहम है, समोसा सूंघने का कितना है? तो ऐसा हमने देखा कोई मेनू? फिर कोई कहेगा नहीं, समोसे को देखने का कितना है? कोई बोलेगा नहीं, समोसे को बोलने का कितना है? तो ऐसा कोई रहता है क्या? या कभी हम होटल में गए हैं और हम समोसा मंगा के खा रहे हैं और बाजू के टेबल पे वेटर पिज्जा लेके जा रहा है और गर्मा गर्म पिज्जा में से सुगंध आ रही है और उस सुगंध का हम आस्वादन कर रहे हैं और बिल जब मिलता है वो 10 दिरहम ऐड करता है, तुमने पिज्जा सूंघा इसके लिए, तो ऐसा करता है क्या? लेकिन पिज्जा सूंघना क्या इंद्रियों का अनुभव नहीं है क्या? सूंघना अनुभव है कि नहीं? समझ में आ, खाना अनुभव है, हम आस्वादन करते ही हमारा एक अनुभव है, लेकिन सूंघना भी हमारा अनुभव है। कई बार हम लोग कई चीज सूंघते हैं पहले और फिर उसका आस्वादन लेते हैं। उसी तरह देखना भी एक अनुभव है, उसी तरह बोलना भी एक अनुभव है। तो कोई होटल में जाओ, आप पैसा मेनू लगा हुआ है, समोसा बोलने का 1 रुपया, समोसा देखने का 2 रुपया, समोसा सूंघने का 3 रुपया और खाने का 5 रुपया, ऐसा होता है क्या? ये सारे अनुभव है, देखना सुनना बोलना सब अनुभव है और खाना भी एक अनुभव है, लेकिन खाने का चार्ज लगाते हैं, बाकी चीज का नहीं लगाते। तो बाकी चीज जानते हैं कि अनुभव है, लेकिन फिर भी उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसी तरह ये जो सारे योग है, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ये सब उसी तरह जिस तरह के समोसे को देखना, उसको सुनना, उसके बारे में बोलना, लेकिन समोसा खाना जो है वो केवल भक्ति योग है। तो केवल भक्ति योग ही हमको समोसे का रसास्वादन कर सकता है, करा सकता है। खाली उसी से हम आस्वादन कर सकते हैं कि समोसा कैसा है, नहीं तो कितना भी उसको देख लो, सूंघ लो, हाथ लगा लो, अच्छा लग रहा है, नो कोई रसगुल्ले को पकड़ोगे स्पॉन्जी है, बहुत अच्छा है, लेकिन अरे उससे क्या आनंद आएगा क्या? जब तक जीवा पे नहीं जाएगा आनंद नहीं आएगा उसका। तो बाकी कितना भी कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग कर लो, उल्टा पुल्टा लटक लो, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक भक्ति नहीं करेंगे परम सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा। परम सत्य का साक्षात्कार 3 रूप में होता है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति सत्यते। ये 3 रूप में भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। तो ये जो दूसरे योग है वो ब्रह्म और परमात्मा तक ले जाते हैं, लेकिन केवल भक्ति योग है जो हमें भगवान से मिला सकता है, इसलिए भक्ति योग सर्वोत्तम है। तो हमको ये पता लगाना चाहिए कि क्यों भक्ति योग जो है, और भक्ति जो है वो हमारे को क्या सिखाती है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। बाकी जो योग है वो रिचुअल सिखाते हैं हमारे को, कर्म योग में ये रिचुअल करो, कर्म कांड करो, ऐसा करो, ऐसा करो, 10 बार हाथ धो, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीजें होती है, कई बार गड़बड़ हो जाता है, समझ में नहीं आता है। एक बार एक व्यक्ति था, उसने अपने विवाह पे किसी पंडित को बुलाया और पंडित छोटा सा एकदम लेके आया वो अपना हवन कुंड, और उस कुंड के अंदर 2-3 छोटी छोटी कांडी लकड़ी डाल के और हवन करने लगा, और वहां पे एक भक्त एक्चुअली वो भी गया था वहां पे देखने लगा, तो किताब खोल के वो पढ़ रहा है, तो उसने देखा कि वो सारे मंत्र जो पढ़ रहा है वो अंत्येष्टि के मंत्र है। मतलब जब श्राद्ध किया जाता है किसी का और वो जो मंत्र पढ़ा जाता है वो विवाह में पढ़ रहा है, तो इस भक्त ने तुरंत उसको रोका, बोला ये क्या कर रहे हो? बोला नहीं प्रभु जी, वो क्या है कि घड़ी घड़ी में घर से निकला तो दूसरी पुस्तक उठा लिया, अंत्येष्टि वाली पुस्तक हाथ में आ गई, अभी क्या करूं, कुछ तो करना था, दूसरा भी मेरा हुआ है, तो वो और किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। तो ये सब रिचुअल्स हम लोग कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति की शादी हो रही थी, एक लेडी की, उसका भाई भी था, तो पंडित सब अरेंजमेंट कर रहा था, पहले फिरने ला सारे अरेंज करने पड़ते हैं, तो हर चीज यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे, ये चीज यहाँ पर, फल फ्रूट है वो जो है सब जमा कर रहे थे, और जब वो लगा रहा था तो उसने देखा कि बिल्ली है जो घूम रही है उधर से उधर, छलांग मार रही है, तो उसने सोचा बिल्ली सब कुछ बिगाड़ देगी। तो उसने क्या कहा, उसका जो असिस्टेंट था उसको कहा टोकरी लो और बिल्ली को ऊपर रख दो, तो उसने उठाया सीधा वो बिल्ली के ऊपर बास्केट रख दिया, टोकरी पर रख दिया ताकि बिल्ली डिस्टर्ब ना कर सके, और फिर उसने शादी करा दी। अब ये जो लड़की का भाई था ये शादी देख रहा था, तो इसने देखा हाँ सब अरेंजमेंट है, तो खुद की शादी होने लगी तो वो भी अरेंजमेंट देखेगा, सारे अरेंजमेंट आके देखा कि बराबर है, सब अरेंजमेंट देखा, बाद में चिल्लाया अरे वेयर इज द कैट अंडर बास्केट, तो बिल्ली किधर है उस टोकरी के नीचे, मतलब बोला ये भी शादी का हिस्सा है। तो रिचुअल ऐसे होते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया है, उस रिचुअल को स्पिरिचुअल बना दिया है। तो इसके लिए हमारा जो इस्कॉन है उसको स्पिरिचुअल, नो रिचुअल, If you add SPI, it becomes spiritual. So SP is meant for Srila Prabhupada. एंड आई इज मेंट फॉर इस्कॉन. तो एस पी आई इस्कॉन में आने पर ही रिचुअल को स्पिरिचुअल हम लोग बना सकते हैं. तो ये ज्ञान हमको श्रील प्रभुपाद जी देते हैं. तो इसलिए भक्ति योग में जब आते हैं तो लोग क्या बोलेंगे, हमको छोटा इन्वेस्टमेंट करना है, बड़ा रिटर्न चाहिए, यही इच्छा रहती है हमारे सबकी. तो भक्ति में क्या है, भक्ति में आओगे छोटा सा कार्य करो और उसका बड़ा रिजल्ट मिलता है हमारे को ना, भगवान उसका हमको रिजल्ट देते हैं. तो उसी प्रकार जब तक हम ना भक्ति करते रहेंगे तब तक हम उसका आस्वादन कर सकते हैं. छोटा इन्वेस्टमेंट करो, बड़ा रिटर्न मिलता है. और दूसरा कोई पूछेगा कि ठीक है चलो आपने कह तो दिया कि छोटा पूंजी लगाऊंगा और बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, जैसे कैसे अभी अजामिल जो था उसने क्या किया, एक बार भगवान का नाम लिया, छोटा इन्वेस्टमेंट और वैकुंठ गमन सीधा, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान लेके चले गए. गजेंद्र ने एक बार भगवान को पुकारा, भगवान उसको लेके गए. छोटा इन्वेस्टमेंट किया, एक बार भगवान का नाम लिया और बस ना भगवान उसको लेके चले गए. छोटा इन्वेस्टमेंट बिग रिटर्न. तो कोई पूछेगा कि ठीक है चलो छोटा इन्वेस्टमेंट तो मैं कर रहा हूँ लेकिन कब तक, कितना टाइम लगेगा ना, टाइम रहता है. एफडी एक साल के लिए करते हैं, पांच साल के लिए करते हैं, दस साल के लिए करते हैं. कोई भी इन्वेस्टमेंट का एक लॉकिंग पीरियड रहता है कि उसके अंदर हमको इन्वेस्टमेंट करना रहता है. तो कोई सोचेगा अच्छा ठीक है इन्वेस्टमेंट तो मैं कर रहा हूँ पर कितना.
सो कैन वी कनेक्ट द वायर को
इधर, सॉरी. तो कोई बोलेगा लेकिन कितने टाइम तक, तो फिर जवाब देगा व्यक्ति, बोलेगा ठीक है काम करो 100-150 साल तक आप जमा करो पूंजी, उसके बाद आपको मिल जाएगा धन. तो सोचेगा अरे क्या बात बता रहे हैं, 100 साल तक मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा. तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और अगर 100 साल मुझे लग रहे हैं तो किस तरह से मैं इसको कर पाऊंगा. तो इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं कि अच्छा टाइम फ्रेम तुमने दे दिया यार, तुमने बता तो दिया कि छोटा इन्वेस्टमेंट है लेकिन 100 साल तक. ऐसा कोई कहेगा कि नहीं एक काम करो 100 रुपए डिपॉजिट करो, 100 साल के बाद 5000 रुपए बनेगा. 100 का 5000 बड़ा फिगर है लेकिन 100 साल के बाद.
तो 100 साल के बाद यहाँ पे जरा,
तो कोई बोलेगा अरे 100 साल का पीरियड हमको दे दिया है, 100 साल के पीरियड में मैं कैसे कर पाऊंगा. तो शास्त्र कहते हैं कि नहीं इतना भी टाइम नहीं लगेगा, एकदम कम समय के अंदर, छोटे से समय में एक जीवन के अंदर आपको भगवान भगवत धाम लेके जाएंगे. तो तुम सोचेगा अरे बहुत बड़ी बात कह दी, एक जीवन लगेगा. तो जहां पर हम अगर जीवन के श्रृंखलाओं की बात कर रहे हैं, मतलब पता नहीं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इति दुस्तारे खलु विस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारे, कि कितनी बार हमारा जन्म हुआ है, कितनी बार हम मरे हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में हम लोग घूमे हैं. और 84 लाख योनियों में अगर हम घूम रहे हैं तो एक जीवन बहुत छोटा पीरियड है. आपको समझ में आ रहा है कि जीवन की श्रृंखला के अंदर अगर एक जीवन के अंदर भगवान हमको भगवत धाम लेके जा रहे हैं तो बहुत छोटी बात है, टाइम फ्रेम बहुत छोटा है. तो हमको समझना चाहिए कि सबसे पहले क्या है कि कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिटर्न, फिर कम टाइम के अंदर. तो कोई सोचेगा अरे वाह बहुत अच्छा प्रपोजल है, लेकिन फिर कोई तीसरा सोचेगा कि तुम बोल रहे हो अधिक फल मिलेगा बहुत कम माल लगाने पे बहुत कम समय में, लेकिन तो भगवान एक और बात कहते हैं, जब कम कम समय की बात कहते हैं तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि तेषाम अहम समुद्रतम मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मई आवासिता चेतसाम. वो कहते हैं कि भवामी न चिरात, कि मैं टाइम नहीं लगाता हूं, जब मैं जब संसार से किसी को उठाता हूं तो उसके लिए क्या कहा है कि मृत्यु समुद्रता, समुद्रता का मतलब होता है कि समान रूप से देखता है वो, भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, उसको उठा लेते हैं और न चिराग टाइम नहीं लगाते. जैसे गजेंद्र ने जैसे आवाज लगाई तुरंत भगवान पहुंच गए, द्रौपदी ने जैसे आवाज लगाई भगवान तुरंत पहुंच गए, बिल्कुल समय गवाया नहीं. और ऐसे बताते हैं कि जब गजेंद्र के साथ भगवान आ रहे थे तो गजेंद्र थक गया, हांफने लगा एकदम, उसकी स्पीड भगवान की स्पीड के सामने कम पड़ गई. तो भगवान ने क्या किया, गजेंद्र को अपने कंधे पर उठा लिया और एक हाथ से गजेंद्र को हवा कर रहे थे और दूसरे हाथ से धोती संभाल रहे थे, भगवान की धोती उड़ रही थी इधर उधर. सो इसके लिए सॉरी गरुड़ को उठा लिया था, तो गरुड़ को भगवान लेने जा रहे थे, एक हाथ से गरुड़ को पंखा कर रहे हैं और दूसरे हाथ से धोती संभाल रहे हैं और तुरंत आके बचाया. तो भगवान कहते हैं कि समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात, अरे मैं टाइम नहीं लगाता हूँ. तो किसी को बचाने के कई तरीके होते हैं, एक तो ऐसा कि आप किसी को बचाने के लिए जाओ समुद्र में और डुबा दो, उसका वही हरी बोल हो जाएगा. फिर दूसरा एक उठा के लाओ बचा के लाओ लेकिन किनारे में लाने के पहले छोड़ दो थक के, बोले बहुत थक गया यार इतना नहीं बचा सकता. اور تیسرا ہے کہ اس کو آپ اٹھا کے لے کے آپ باہر اس کو صحیح سلامت چھوڑ دو. بھگوان جو ہے وہ سمدھرتا ہے, ادھار بھی کرتے ہیں اور ایسا ادھار کرتے ہیں ایک دم بالکل بالکل کم ٹائم میں, نہ چرا. تو اس کے لیے بھگوان کا جو ہے جیسا وہ اسٹوری ہے نا کہ بھگوان سوئم آتے ہیں. تو ایک بار اکبر نے پوچھا بیربل سے, ارے تمہارے بھگوان کو وہ ٹائم نہیں ہے کہ خود آ جاتے ہیں, ارے ان کے اتنے سارے نوکر چاکر ہیں ان کو آنا چاہیے. تو بیربل نے کہا کوئی بات نہیں بادشاہ, سمے پہ تم کو بتاؤں گا. تو ایک بار نوکا میں بادشاہ کے ساتھ جا رہے تھے, انہوں نے بیربل کیا کیا, بیربل نے بادشاہ کا جو بچہ تھا اس کو نیچے دھکا مار دیا, وہ ندی میں گر گیا. اور جیسے گرا بادشاہ دھرام سے ندی کے اندر جمپ مار دیے اور بچا کے لے کے آئے اس کو بچے کو. اور بیربل نے پوچھا تم نے یہ کیا کیا. بیربل نے کہا تمہارے پرشن کا جواب دیا بادشاہ نے ایک لگایا ٹھاڑ. تو ایسا جواب دیتے ہیں, میرے بچے کو نیچے گرا دیا. تو بولے ارے آپ نے ہی تو کہا تھا نا, آپ کے اتنے سارے آپ اہم سا ہو, آپ کے اتنے سارے نوکر چاکر تھے, میں تھا, آپ کیوں کودے. بولے میرا بچہ یار, میں نہیں بچاؤں گا تو کون بچائے گا. بولا اسی طرح ہم بھی بھگوان کے بچے, بھگوان نہیں آئے گا تو کون آئے گا. تو ایک دم کم سمے میں ایک بار پروپا جی ایسے جنہوں میں بیٹھے تھے لیکچر دے رہے تھے, اور ادھر اپنے برلا جی کے ایک ریلیٹو ہے رشتے دار موہتا جی, برج رتن موہتا, وہ وہاں پر آ گئے. اور پروپا جی صاحب اپنے بھکتوں سے بولے گا ارے دیکھو 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 موہتا جی آ گئے, موہتا جی بہت بڑے بزنس مین ہیں. تو موہتا جی نے کہا ارے پروپا میں کدھر بزنس مین ہوں, میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں, بزنس مین تو آپ ہے. 40 روپے لے کے گئے تھے اور 40 کروڑ بنا دیا آج آپ نے. تو پروپاد نے کہا ٹھیک ہے میرے بزنس میں جوائن ہوئے. بولا نہیں نہیں ابھی سمے ابھی. پروپاد نے کہا ٹھیک ہے کم سے کم ہمارا ہیلپ تو کرو. تو پھر جوہر مندر کا نرمان ہوا, اس کے اندر انہوں نے سہایتا کی. تو ایک اور ہے بہت بڑے بزنس مین, اسٹرلائٹ انڈسٹریز کے مالک ہے, ویدانتا ریسورسز کے مالک, آپ نے نام سنا رہے گا ان کا, انیل اگروال. تو انیل اگروال جو ہے وہ پرم پوجا رضوان مہاراج سے بہت اچھے مترتا رکھتے ہیں, بہت کلوز ہے اور اچھے بھکت ہے. اور اتنے سارے ان کی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں کہ ابھی آئی تھنک ایک ان کا سودا ہونے والا تھا جس میں وہ مکیش امبانی اور انیل امبانی کو بھی پچھاڑ کے نمبر ون پہ آ جاتے تھے. تو ایسا کچھ وہ ڈیل ہوا نہیں. تو انیل اگروال ایک بار مہاراج کے ساتھ بات کر رہے تھے, تو مہاراج کو کہنے لگے کہ مہاراج میرے پاس اپار دھن ہے, اتنا دھن ہے جیسے کہ ساگر, ساگر کے جتنا اتنا سارا دھن ہے, لیکن کیسا ہے, کھارا ہے, بہت جل ہے لیکن کھارا ہے. آپ کے پاس بہت کم جل ہے, تھوڑا ہے لیکن میٹھا ہے, ایسا میٹھا جل ہے. تو ایک بھکت نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرتے تھوڑا ایکسچینج کرتے آپ کا کھارا ہمارے کو دے دو. تو بہت دنوں تک سامنے نہیں آئے. تو کہنے کا تاتپریہ کہ ہم ایسے سوچتے ہیں بٹورتے جائیں گے بٹورتے جائیں گے, لیکن پربھوپاد نے کیا کیا, 40 روپے لے کے گئے, وہ بھی واپس لے کے آئے, خرچہ نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے پربھوپاد وہ 40 روپے واپس لے کے آئے کیونکہ ہی کڈ ناٹ ایکسچینج, وہاں پہ کسی کو روپے چاہیے نہیں تھے 1965 میں. تو 40 روپے لے کے گئے, وہ بھی لے کے آئے اور 40 کروڑ بنا دیے. شریلا پربھوپاد کی اسکان بیبیٹ سنستھاپک آچاریہ پربھوپاد کی. بہت کم سمے میں, نہ چرا, بہت کم سمے میں پربھوپاد نے بہت پیسے بنا لیے اور اتنے سارے بھکت بنا لیے, وہ ان کی پونجی ہے. ایک بار پربھوپاد جی کا نیو ورنداون کے اندر بہت ہی اچھا مندر ہے, بہت دیکھنے لائق. ہماری بھی اچھا ہے کہ کبھی ہم کو بھگوان یہ سوبھاگیہ دے ہم اس کو دیکھ کے آئے. اس کو کہتے ہیں پیلس آف گولڈ. اس پیلس آف گولڈ کے اندر جب بن رہا تھا, اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس پورے پیلس آف گولڈ کو بھکتوں نے خود بنایا ہے, اور ان بھکتوں نے بنایا جن کو آرکیٹیکٹ اور کڑیا کا کچھ گیان نہیں تھا. اور جب اس کو بنا رہے تھے تو بھکت پربھوپاد کو وہاں پہ ٹور دے رہے تھے. تو ٹور دیتے دیتے ایک بھکت نے پربھوپاد سے کہا کہ پربھوپاد ہم بھاگوتم میں دیکھتے ہیں کہ دوارکا کے جو محل تھے وہ سونے چاندی سے بنے تھے, ہیرے جوار جڑے ہوئے تھے, تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا مندر جو ہے اس کو بھی ہیرو سے ایکچولی ہم کو پرجولت کرنا چاہیے. وی شوڈ آلسو لیٹ یور پیلس آف گولڈ وتھ جویلز. اور پتا ہے پربھوپاد جی نے کیا کہا؟ پربھوپاد جی نے کہا مائی ڈیووٹیز آر مائی جویلز. میرے بھکت جو ہے وہ ہیرے جواہرات کے جیسے ہیں, اور میری کیرتی جو ہے وہ میرے بھکتوں کے دوارا پرکاشت ہوگی. یہ پربھوپاد جی کی مہانتا ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو بھکتی کے اندر لگایا. تو ٹھیک ہے کوئی کہے گا ٹھیک ہے کم انویسٹمنٹ کیا, بہت ریٹرن ملا ہے, کم سمے میں ملا ہے, لیکن تیسرا بولے گا کتنا پریاس کرنا پڑے گا, کتنی محنت کرنی پڑے گی نا. کئی بار بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور پورا محنت کرنے کے بعد لگتا ہے. تو کوئی بولے گا ٹھیک ہے محنت تو اتنا کرنا پڑے گا کہ ہر دن تم کو کم سے کم 20 سے 22 گھنٹے کام کرنے پڑیں گے, اور ایک دم محنت کرنی پڑے گی, کوئی چھٹی نہیں ملے گی, اور ایسا 20-25 سال محنت کرو گے تو تم کو مل جائے گا ریٹرن, اور اگر زندہ رہے تو تمہارا ریٹرن لے لے گا. تو لوگ سوچے گا کہ یار یہ کیا ہے, 20-25 گھنٹے دن میں کام کر رہے ہیں, 20-22 گھنٹے 24 میں سے, اور کوئی چھٹی نہیں کچھ نہیں, اور ایسے کام کرو گے تو مر ہی جاؤ گے نا. تو اتنا کام کرنے کے بعد تو بتاتے ہیں کہ بھکتی یوگ ایسا ہے کہ اس میں پریشرم کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ چھوٹا انویسٹمنٹ ہے, کم سمے میں مل رہا ہے بنا پریاس کے. پریاس کیا کرنا ہے, بھگوان نے جیوا دی ہے, خالی اس جیوا کو ہلانا ہے, بولنا ہے ہرے کرشنا
ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے.
تو آپ کسی سے کہہ سکتے ہو کہ دیکھو کیسا انویسٹمنٹ پروڈکٹ ہے ہمارا, کم انویسٹ کر رہے ہیں زیادہ ریٹرن مل رہا ہے, کم سمے میں مل رہا ہے اور کم پریاس میں مل رہا ہے, صرف بھگوان کا نام لینا ہے اور مل رہا ہے. تو لوگ بولیں گے واہ بھائی واہ, سارے ستگن اسی میں آ گئے تمہارے, اتنے سارے ستگنوں سے بھرا ہوا یہ. تو یہ ایسا پروڈکٹ ہے جس کے بارے میں ہم کو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے, ایڈورٹیزمنٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر پروڈکٹ کا ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرو گے تو کیسے اس پروڈکٹ کو بیچو گے, ہے نا. کئی بار ہر چیز کا کرنا پڑتا ہے ہم کو, پوری دنیا وگیاپن کے پیچھے لگی ہوئی ہے, وگیاپن کے پیچھے پاگل ہے. اور شاستر کیا ہے, یہ بھگوان اور بھگوان کی شکتیوں کا وگیاپن ہے, یہ بھگوان کا وگیاپن ہے کہ ہم کو بتانا پڑتا ہے لوگوں کو, دیکھو کم سمے میں کم سمے میں کم انویسٹمنٹ میں اور زیادہ ریٹرن ملتا ہے کم پریاس کے اندر. تو لوگ بولیں گے ارے بہت اچھا پروڈکٹ ہے. تو اس کے لیے جیسے بھی نا کوئی جیسے کولا کی بوٹل ہے کوکا کولا, تو کوکا کولا کی بوٹل دیکھ کے نا کوئی من میں کوئی بھاونا پیدا ہوتی ہے کیا, کہہ رہے کتنا اچھا ہے, کالے رنگ کا ہے, دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا, تو کوئی اس کے پرتی آکرشن نہیں ہوتا. لیکن اس کے بارے میں دس چیزیں لکھی جاتی ہیں, یہ بہت اچھا ہے, چلڈ ہے, ٹھنڈا ہے, سواستھ وردھک ہے, شکتی وردھک ہے, اور اتنی ساری باتیں لکھنے کے بعد پھر آکرشن پیدا ہوتا ہے, پیزا کے ساتھ لوگ اس بوٹل کو لیتے ہیں. لیکن نہیں تو کیا ہے, کھارا پانی ہے وہ, اس میں کچھ ہے ہی نہیں ایکچولی, کوئی ٹیسٹ نہیں کچھ نہیں, لیکن اتنا بمبارڈمنٹ کر دیا یہی ہے رائٹ چوائس. تو ارے باپ رے باپ, اتنا سارا کچھ بتا دیا, اس کے لیے بس لوگ لے رہے ہیں پی رہے ہیں مزے سے, پتا نہیں ہے کیوں پی رہے ہیں. تو ایک بار کیا ہوا, ایک کمپنی نے کولا کمپنی نے بہت بڑا وگیاپن دیا, بہت پیسے خرچ کیے اس وگیاپن کے اوپر, اور اتنا کرنے کے بعد اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلا. تو سی او کو بڑا آشچر ہوا کہ یہ کیا ہو گیا, اور وہ وگیاپن کہاں ہوا, اس گلف ریجن میں ہوا. تو گلف کے اندر بڑا وگیاپن کیا بیچنے کے لیے بوٹل, اور پھر سی او کو بڑا آشچر ہوا, اتنے سارے پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی ریزلٹ نہیں نکل رہا مطلب کچھ گڑبڑ ہے. تو خود وہاں پہ آیا اڑ کے اور اس مینیجر سیلس مینیجر سے پوچھا کہ بھائی کیا کیا تم نے وگیاپن. تو اس وگیاپن میں انہوں نے دکھایا کہ ایک شیف ہے, ایک فوٹو کے اندر تین فوٹو لگائے تھے, تو پہلے فوٹو میں ایک شیف ہے جو ایک دم ایسا ڈھیلا سا ایک دم مریل کے جیسا ایسا بیٹھا ہوا ہے, اور دوسرے فوٹو کے اندر ہے کہ وہ کوکا کولا کا بوٹل اٹھا کے پی رہا ہے, وہ کوکا کولا کی بوٹل اس کے منہ میں, اور تیسرے کے اندر ایک دم چستی پھرتی سے ایک دم چست پھرت ایک دم بہت ایک دم اتنی اسفورتی کے ساتھ وہ وہاں پہ کھڑا ہے. تو سیو نے بولا یار کمال کا ایڈورٹائزمنٹ بنایا, اتنا اچھا ایڈورٹائزمنٹ بنایا پھر بھی پروڈکٹ فیل کیوں ہو گیا. تو بعد میں پھر کسی نے بتایا کہ سر آپ کو معلوم نہیں ہے گلف میں لیفٹ سے رائٹ نہیں پڑتا, رائٹ سے لیفٹ پڑتا ہے. مطلب پہلے فوٹو میں کیا دکھا, ارے چستی پھرتی سے بھرپور, پھر کوکا کا بوٹل پیا ڈھوس ہو گیا. تو پتا چلنا چاہیے کہ ایڈورٹیزمنٹ بھی کیسے کرنا ہے, پرچار کر رہے ہیں کسی کو جا کے بول دیا بھگوت گیتا میں ایسا لکھا ہے تم پشو ہو, کیا ہو گیا, میں تو پرچار کرنے کے لیے گیا, سر ایسا پرچار کرتے ہیں کیا. ارے پرچار کرنے کے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, فارمولا ہوتا ہے. جیسے کوئی اگر بھکت آیا ہے بھگوت گیتا پہ کلاس دینے کے لیے, اور جیسے ہمارے بھکت کو آ کے ان کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ کوئی بھکت آئے ہیں, تو بولیں گے کہ آج ہمارا بڑا سوبھاگیہ ہے کہ ہمارے بیچ میں فلاں فلاں پربھو جی آج آئے ہیں, ان کا جو قد ہے وہ 5'2" ہے, ان کا رنگ ساولا ہے, اور یہ اسکون میں آنے کے پہلے 50 کلو کے تھے, اب 60 کلو کے ہو گئے. یہ پرساد کا شکتی ہے, پرساد کھا کھا کے 10 کلو ان کا وزن بڑھ گیا ہے, اور ان کا بلڈ گروپ جو ہے وہ بی پازیٹو ہے. تو ایسا پریچے دو گے, یہ بھی غلط نہیں ہے, صحیح ہے, پریچے صحیح ہو سکتا ہے, ان کا نام یہ ہے اس گاؤں سے ہے ایسا, لیکن یہ پریچے کہاں دیا جاتا ہے, اسپتال میں یا پولیس اسٹیشن میں. بھگوت گیتا کے لیے آئے تو ایسا پریچے اگر دو گے تو جو, یا پھر اگر وہ بولیں گے کہ نہیں یہ پربھو جی بہت ہمارے بیچ میں آئے ہیں, ہمارا سوبھاگیہ ہے, اور انہوں نے کئی سال اسکول میں بتائے ہیں, مطلب بہت بار فیل ہو چکے ہیں, اور کئی بار اسکول میں سب بتانے کے بعد کالج میں داخلہ لیا وہاں سے نکال دیے گئے, کالج سے ان کو رسٹیکیٹ کر دیا گیا, نکال دیا. پھر انہوں نے کوئی کمپنی جوائن کی, باس کے ساتھ ان کا بنا نہیں, وہ بھی چھوڑ دیا. پھر انہوں نے اپنا بزنس چالو کیا, وہ بزنس بھی فیل ہو گیا, چلا نہیں. تو سب کچھ کہیں پہ کچھ آشرے نہیں ملا, تو سر وہ دھرمان پریت سب کچھ چھوڑ کے اسلام میں آ گئے. अभी इस्कॉन के अंदर अपना समय बिता रहे, वहां भी भक्तों के साथ इनके अनुभव है, चलता नहीं है, लेकिन आज हमारा सौभाग्य प्रभु जी आए हैं प्रवचन देने के लिए और इनके चर्चा का विषय है हाउ टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो ऐसा अगर परिचय दोगे तो जो रहा सहा बचा हुआ है इंटरेस्ट भी चला जाएगा। तो प्रभु जी बोले एक काम करता हूँ प्रभु जी, मैं जरा थोड़ा चैंटिंग बाकी बाहर करके आता हूँ, प्रसाद के टाइम पे आ जाऊंगा। तो जो सब कुछ चला गया, तो जब भी हम अगर इसी के बारे में बताते हैं तो कहां कौन सा परिचय देना है, पुलिस स्टेशन का परिचय पुलिस स्टेशन में देना चाहिए, सत्संग का परिचय सत्संग में देना चाहिए। तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि कोई आए प्रभु जी गीता भागवत के बारे में कुछ हमको दो शब्द कहेंगे। नहीं तो एक बार ऐसा हुआ कि भक्तों ने कुंभ मेले में गए थे और कुंभ मेला में एक स्टॉल लगाया, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर स्टॉल। तो पूर्ण प्रश्न और उसमें लिखा था आंसर्स आर गिवन फ्री, तो लाइन लगे वाला फ्री में दे रहे, जहां फ्री में कोई मिलता हम लोग भाग जाते उधर, तो चलो उधर। तो पूछने के लिए गए तो एक जन आके पूछा, दो प्रभु जी बैठे थे वहां पे, बोला प्रभु जी मैं गंगा में स्नान कर रहा था, मेरा बटुआ खो गया, किधर मिलेगा। बोला यार ऐसा क्वेश्चन का आंसर इधर नहीं देते। तो किसी ने कहा कि नहीं मेरा मेरा मंगेतर के साथ मेरा बड़ा अनबन चल रहा है, कैसे सॉल्व होएगा बताओ। अरे ये सब क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछते, ये सब पुलिस स्टेशन में जाके पूछो, यहाँ पर पूछना चाहिए मैं कौन हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, इसका जवाब मिलता है यहाँ पे। और कोई वही व्यक्ति जाके पुलिस स्टेशन में पूछे एक पुलिस अधिकारी से, बताओ मैं कौन हूँ, तो बोलेगा अंदर चल मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। तो कहाँ पर कौन से प्रश्न पूछने चाहिए, किस तरह का प्रचार करना चाहिए, किस तरह की प्रीचिंग करनी चाहिए, नहीं तो सब गलत सलत करके आएंगे। और बोले कि अरे गुरु महाराज ने मेरे को सेवा दी, मैं सेवा कर रहा बहुत अच्छी तरह से। अरे पर किस तरह से सेवा कर रहा है, बुद्धि का तो प्रयोग करो। एक बार प्रभुपाद जा रहे थे रस्ते में, पर प्रभुपाद के साथ उनके पीछे पीछे भक्त चल रहे थे, तो प्रभुपाद ने उनको कहा देखो ये बिल्डिंग कितना अच्छा है, अगर ऐसा बिल्डिंग हमें मिल जाए तो हम इसके अंदर कितना अच्छा मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। तो सबने कहा जय प्रभुपाद, ये प्रभुपाद, और प्रभुपाद आगे बढ़े। थोड़े दूर गए, एक अच्छा सा गार्डन दिखाई दिया, प्रभुपाद ने कहा देखो कितना अच्छा गार्डन है, ऐसा गार्डन अगर हमें मिलेगा तो हम कितना अच्छा इधर कीर्तन कर सकते हैं, जय प्रभुपाद ये प्रभुपाद, सब आगे बढ़े। फिर आगे रह गए, एक कुत्ता घूम रहा था, प्रभुपाद ने कुत्ते के अनुसार किया, बोले देखो कितना अच्छा कुत्ता है, इस कुत्ते को अपने मंदिर में लेके जाएंगे तो कितना अच्छा होगा, सब लोग बोले जय प्रभुपाद ये प्रभुपाद। प्रभुपाद ने घूम के देखा कुत्ते का क्या करोगे, सब लोग कुत्ते का क्या करेंगे, तो सोचा ही नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा ये भावुकता अच्छी नहीं, गुरु से कोई आदेश मिले तो निश्चित उसके प्रति समर्पित हो जाओ, लेकिन मनन करो कि आदेश क्यों मिला, ये सोचना चाहिए। तो सेवा कर रहे हैं, कई बार भक्तों के डस्ट लेने के लिए जाते हैं, इतना लड़ाई करते हैं हाथ पैर तोड़ देते हैं, अरे डस्ट लेना है तो मतलब उसका एक उसके पीछे दस्त का मतलब है कि भक्तों का बात मानना, उनका आदेश सुनना, वो जो कहते हैं वैसा करना, ये नहीं कि उनका मोजा वोजा खोल के आप उसका दस्त निकाल लो उसमें, ऐसे नहीं है। तो ये सब बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एनीवे, तो इस तरह हम परिचय अगर देंगे लोगों को कि देखो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए लाइन लगेगी, भक्ति करने के लिए लोगों के अंदर भावना उत्पन्न होगी, नहीं तो सोचेंगे ये क्या वही बात बता रहे बार बार, हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है, हमको भगवत धाम जाना है, हरि नाम का जप करो, यही चीज है बार 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 सुन के कुछ पक गए। तो एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद से कहा प्रभुपाद क्यों आप ये बार बार कहते हो ये शरीर नहीं हम आत्मा है। प्रभुपाद ने पूछा क्या तुम्हें समझ में आ गया तुम शरीर नहीं हो, बोला नहीं प्रभुपाद आया नहीं, तो इसीलिए बता रहे सुनो सुनो। तो बोलेगा अरे क्या वही सरल बात बार बार बता रहे हैं हमको भगवत धाम जाना है ये करना है वो करना है, अरे कुछ जटिल बताओ कुछ कॉम्प्लेक्स बताओ कुछ ऐसा घुमाओ कि हमारे दिल जो दिमाग के तार है यू नो वो टूट जाए और उसके अंदर करंट लगे, ऐसा कुछ बताओ, नहीं तो सरलता का पूरी तरह से नाश हो गया। हमारा मूवमेंट बहुत इजी है, क्या है प्रोसेस बहुत सिंपल है, माला उठाओ और हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
तो बस यही सिंपल है। लेकिन ये चीज बताने के लिए सिंपल चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कॉम्प्लेक्स में सेमिनार देना पड़ता है, तब लोग सोचते हैं हाँ बहुत कॉम्प्लेक्स में बताया बहुत कुछ अच्छी बात बोल रहा है, सिंपल बात लोगों की समझ में नहीं आती, सरलता का नाश हो गया एक्चुअली। तो इसके लिए बताना पड़ता है, तो कोई कहेगा ठीक है बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हमको कम इन्वेस्ट करना है ज्यादा रिटर्न मिलेगा, कम समय में मिलेगा, कम प्रयास में मिलेगा, लेकिन इतना सब कुछ हमको विश्वास नहीं होता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है कुछ कैच है इसके अंदर। ऐसा होता है ना कई बार बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट करते हैं और एक छोटा सा एक्स्ट्रा लगाते हैं उधर नीचे लिखते हैं कंडीशन सप्लाई, कुछ कंडीशन है कुछ योग्यता चाहिए उस चीज को खरीदने के लिए। योग्यता क्या है, you know, buy before 31st December, या buy only from here, बहुत सारा कुछ ना कुछ कंडीशन लग देते हैं उसके अंदर और तब लगाते हैं. तो वो ही सोचेगा कि यार तुम्हारे में कुछ कंडीशन तो होगा, इतना अच्छा प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता है. तो बताते हैं कि चौथा प्रश्न क्या है, क्या योग्यता है इस प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए, क्या योग्यता चाहिए. तो भगवान कह रहे हैं कि कोई योग्यता नहीं चाहिए. तो विश्वास नहीं होता, अरे क्या बात कर रहे हो यार, कोई योग्यता नहीं चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है. तो भगवान कहते हैं यार मैं कह रहा हूँ कोई योग्यता नहीं चाहिए. नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि तारा साक्षी जगाई मधाई, कि हरिनाम जो है ये गोलोक से आया है और ये उद्धार करता है. और इसका प्रूफ क्या है, देखो जगाई जगाई मधाई जो है उनका उद्धार हो चुका है. तो प्रूफ बता रहे हैं, बोले उनकी क्या योग्यता थी, कोई योग्यता नहीं थी. हर तरह से वो मर्डर करते थे और पता नहीं क्या क्या सब सारी गंदी प्रवृत्ति उन्होंने करके रखी थी, उनका भी उन्होंने उद्धार किया है. तो शास्त्र हमको वर्णन करते हैं और हमारे जो परम आचार्य है श्री रूप गोस्वामी वह इसका जवाब देते हैं. बताते हैं कि भक्ति करने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं. तो कहते हैं कि भक्ति करने के लिए कोई भी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है. कोई भी किसी भी अवस्था में किसी भी क्षण किसी भी तरह कोई टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस नहीं है, कोई योग्यता नहीं है. तो एक बहुत बड़ा ही अच्छा श्लोक कहते हैं, वे कहते हैं व्याधस्य आचरम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जया किं युनाम रूपम अधिकं किं तत्सुदाम नोधनम वंश को विदुरस्य यादव पतेर उग्रस्य किं पौरुषम भक्त्या तुष्यन्ति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव. वो कहते हैं कि भक्ति करने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं थी. और कई उदाहरण उन्होंने दिए कि हम इसको ध्यान से सुनेंगे. वे कहते हैं व्याधस्य का आचरण, कि व्याध जो था मृगारी उसका क्या आचरण था, वो पशुओं की हत्या करता था, आधा मार के छोड़ता था, आधा मारा करके छोड़ देता था. उसको भी नारद जी की कृपा से भक्ति मिल गई. है ना, आपने सुना ना मृगारी की कहानी, पता है ना कि मृगारी आधा मार के छोड़ देता था. या उंगली माल जो आगे जाके वाल्मीकि बने, रत्नाकर डाकू थे, डाकू से देखो वाल्मीकि बन गए. क्या योग्यता थी उनकी, क्या आचरण था, हर किसी को मारते थे, लोग डरते थे उनके पास नहीं जाते थे. फिर कोई कहेगा कि ठीक है लेकिन मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो भक्ति नहीं कर सकता, भक्ति तो बहुत महान है, मेरे से नहीं होती है. तो कहते ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव की क्या आयु थी, कितने साल के थे ध्रुव महाराज, 5 साल के थे. प्रहलाद महाराज कितने साल के थे, 5 साल के थे. 5 साल के अंदर उन्होंने भक्ति की, कोई मिनिमम एज भी नहीं चाहिए. नहीं तो हम लोग कोई एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो नर्सरी में बोलते हैं नहीं पहले 2.5 साल का बच्चा होना चाहिए तो नर्सरी में एडमिशन मिलेगा. या फिर 10th के लिए जाते हैं तो एक मिनिमम एज होती है. PhD करने जाओगे एक मिनिमम एज चाहिए. हर चीज के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, लेकिन भगवान यहाँ डेट ऑफ बर्थ का कॉलम ही नहीं है, वहां पे कुछ नहीं. एक शिशु माँ के गर्भ में भक्ति कर सकता है. उदाहरण प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज. भगवान अपने भक्त का जो भक्ति है वो गोद में भी स्वीकार कर रहे हैं. और एक बूढ़ा व्यक्ति 85-80 साल का जो है अजामिल, पूरे जीवन में कुछ नहीं किया, 85-90 ईयर में जाके उसने भक्ति कर ली, एक बार नारायण का मुक्त हो गया. तो कोई कोई आयु नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे दे रहे भगवान सबको. फिर कोई बोलेगा कि नहीं वो सब बात ठीक है लेकिन हमारे में कोई अक्ल नहीं है, मतलब हमारे में कोई ज्ञान व्यान नहीं है, हम तो बहुत अंगूठा छाप लोगे, हमको कुछ नहीं आता है करने के लिए. तो कहते हैं कि विद्या गजेंद्रस्य था, गजेंद्र जो था उसने कौन सी पढ़ाई की थी, क्या वो स्कूल कॉलेज गया था, नहीं. गजेंद्र ने कोई पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन सिर्फ उसने भक्ति की, गजेंद्र की भक्ति स्वीकार कर ली. तो गजेंद्र तो जो है वो हाथी के रूप में थे, हम तो कम से कम मनुष्य का शरीर मिला, ये भगवान की बड़ी कृपा है हमारे पे. तो एक हाथी अगर भक्ति कर सकता है तो हम मनुष्य होकर क्यों नहीं कर सकते, बताओ. फिर कोई कहेगा कि नहीं हमारा तो कोई रूप नहीं है, कुछ नहीं, हम कैसे भक्ति करें. तो बोले कुब्जा का क्या रूप था, एकदम कुबड़ी थी, उसको भगवान ने भक्ति दे दी. फिर कोई कहेगा भगवान की भक्ति करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता है, हमारे पास धन नहीं है, हम तो बहुत गरीब है. तो किसी ने कहा कि जो गरीब है वही भगवान के करीब है. तो सुदामनो, मतलब सुदामा के पास किधर धन था, चिवड़ा लेके आए थे वो भी दूसरे से मांग के, छुपा के रखे थे, देने में शर्म आ रही थी, भगवान ने ले लिया. तो बताते कि कुछ नहीं है फिर भी भगवान दे रहे हैं. और कोई बोलेगा कि वो सब ठीक है लेकिन हमारा वंश बहुत खराब है, हम लोग बहुत एकदम मिच परिवार से है और ऐसे वैसे हैं. तो कहते हैं वंशों को विदुरस्य, विदुर का क्या वंश था, एक दासी पुत्र थे, तो दासी पुत्र हो गए। भगवान ने दुर्योधन का भोग न खायो, रू का शाक विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। दुर्योधन का मेवा आ गया, छोड़ के विदुर के पास गए। और वंश की बात करें तो हनुमान जी कौन थे, हनुमान जी भगवान के बड़े परम भक्त है, लेकिन वंश क्या है उनका, वानर है, वानर के वंश में पैदा हुए हैं, और फिर भी इतनी बड़ी भक्ति की भगवान की। गजेंद्र, गजेंद्र हाथी था, फिर भी बड़ी भक्ति कर ली। उसी तरह विदुर दासी पुत्र थे। और अगर कॉन्ट्रारी एग्जाम्पल देखे हनुमान जी का और प्रहलाद महाराज का, तो हिरण्यकशिपु कौन था, ब्राह्मण था। रावण कौन था, जन्म से वो ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण होने का ये तात्पर्य नहीं कि आप भक्ति अच्छी कर लोगे। तो कोई ब्राह्मण है, कोई बोलेगा मैं तो साउथ से हूँ, साउथ इंडिया से बड़ा ब्राह्मण हूँ, कोई बोलेगा मैं नॉर्थ का पंडित हूँ, तुम लोग तो बंगाल से, उनको कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं, कोई कहां से कुछ फर्क नहीं पड़ता। रावण ब्राह्मण था लेकिन कैसा कार्य किया हमको पता है। उसी प्रकार से हनुमान जी ने और विदुर ने क्या कार्य किया देखो। तो फिर बोलते कि यार हमारे पास लेकिन शक्ति नहीं है, बहुत नाजुक है हम लोग नहीं कर सकते भक्ति, भक्ति के लिए करने के लिए शक्ति चाहिए। तो बोले उग्रस्य किम पौरुषम, कि उग्र उग्रसेन जो थे उसको कई बार जरासंघ ने परास्त किया था, उनमें कोई शक्ति नहीं थी। कंस अपने बेटे ने उनको उधर डाल दिया था जेल के अंदर, उसको भी छुड़ाया भगवान ने, उनकी भक्ति स्वीकार की। तो बताते हैं कि ये सब कार्य भगवान ने किए हैं और कोई योग्यता नहीं देख रहे हैं। भगवान क्या देख रहे हैं, भक्त्या तुष्यंत केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। भगवान सिर्फ एक चीज देखते हैं कि किसमें कितनी भक्ति है, अगर भक्ति देखते हैं तो भगवान उसको तुरंत स्वीकार करते हैं। और इसके लिए भक्ति करना बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमारे परम आचार्य श्री अरूप गोस्वामी जी फिर एक श्लोक का उद्घाटन करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण भक्ति एक ऐसी वस्तु है, अगर कहीं भी मिल जाए तो उसको खरीद लो, कोई भी मूल्य पे मिले खरीद लो। वह कहते हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रेताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकम जन्म कोटि सुकृत नैर न लभ्यते। वह कहते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, ये कहां भी मिले क्या करो, क्रियताम खरीद लो, उठा लो वहां से वस्तु। यदि कुतो भी लभ्यते, ऐसा तो आसानी से मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिल रहा है कहीं भी भक्ति तो उसका आप उठा लो। और उसके लिए एक प्राइस है, मूल्य देना पड़ता है किसी चीज के लिए, वो क्या है, लौल्यम। लौल्यम मतलब उसके पीछे हमारी आसक्ति होनी चाहिए भक्ति करने में, कि कहां से मैं सेवा लूं, कहां पर मैं सेवा करूं, कहां करूं, कहां करूं, बस क्या भक्ति करूं। और एक भक्त जो होता है उसका यही माइंड में चलता रहता है कि मैं कहां भक्ति करूं, किधर पहुंचूं, किसको प्रचार करूं, क्या करूं, इस तरह की उसकी भावना होती है। तो इस तरह की जब हमारी भावना रहेगी तब हम भक्ति को खरीद सकते हैं। और हमारा जो मूवमेंट है वो हमको इतनी गहन और इतनी सारी चीजें बताता है कि उसका कोई ना, भक्ति जो है वो बहुत आसान है लेकिन बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़ है। तो भक्ति के अंदर जैसे भक्ति की जो पराकाष्ठा है, जैसे हमने सेवा की बात की, तो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र में कह रहे हैं कि हे भगवान और भगवान की शक्ति मुझे अपनी सेवा में लगाओ। लेकिन क्या होता है कि हम भगवान से सेवा मांग रहे हैं जब करते करते, लेकिन जब सेवा आती है तो भाग जाते हैं, कोई सेवा आती तो कभी नहीं, तो फिर बाद में कभी मन में लगता है कि अरे भगवान आप मुझे नहीं ये प्रभु जी को सेवा में लगाओ, इनको ज्यादा जरूरत है, मैं तो पति हूं, मैं तो सेवा नहीं करना चाहता। और हमारा जो प्रार्थना है वो भी कितना ऊंचे स्टैंडर्ड का, आप सोचो, हम कल राधाष्टमी में चर्चा कर रहे थे तो अचानक हमारे ध्यान में आया, तो हमारा है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतु दर्पण मार्जनम में, वो कहते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये। वो कोई चीज मांग नहीं रहे भगवान से, वो कहते हैं आश्लिष्य वा पात्रताम पिनष्टु माम तदर्श मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स्वयं नाथ। वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरा आलिंगन करो या मुझे मर्माहत करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी जो ये सीजन चल रहा है, आप लोग जानते हो कि सीजन में कई बार कई लोग ऐसा प्रे करते हैं, शायद हम भी पहले करते रहेंगे, तो वो कहते हैं अंधन को आंख दे, कोढ़न को काया, मांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। माया मांग रहे हैं और हर चीज मांग रहे हैं, दे 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 दे, ये भी दे दे, वो भी दे दे, माया मांग रहे हैं, ऐसा जैसे कि माया की बहुत कमी है, इतनी माया फिर भी माया मांग रहे हैं। और प्रार्थना करने का क्या स्टैंडर्ड है, बोलते देवा हो देवा, देवा हो देवा, तुमसे बढ़कर कौन, वहां तक तो ठीक है, फिर बोलते तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन, हम ہم ایک دم نمبر ون ہیں. اور چیتنیہ مہاپرو کیا کہہ رہے ہیں, گوپی بھرتر پد کملے اور داس داس داسان اداس, یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے, یہ مہاپربھو کا اسٹینڈرڈ ہے, یہ مہاجندر پوری کا اسٹینڈرڈ ہے. مہاجندر پوری جو ہے وہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے پورا سوئرنگ, کہ کسی کی بھکتی کا اگر پراکاشٹھا کرنی ہے تو مہاجندر پوری کے ساتھ دیکھو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, نہ دھنم نہ جنم نہ سندری. تو کوئی سوچے گا کہ مہاپربھو نے شلوک تو بہت اچھا بنایا لیکن یہ نہ کیوں لگایا, یہ نہ نہیں لگانا چاہیے تھا, یہ نہ غلط لگا دیا, ایک جنم تو مل گیا ہے, تھوڑا دھنم چاہیے سندرم چاہیے, بہت ہو گیا ہمارے لیے. وہ کہتے ہیں نہیں, نہ دھنم نہ جنم نہ سندرم کویتام وا جگدیش کا, مجھے فالوور بھی نہیں چاہیے, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے, آپ کی اہیتو کی بھکتی چاہیے. اور یہ اہیتو کی بھکتی ہی پرم ستیہ کا ہم کو آسوادن کرا سکتی ہے, ان کا ساکشاتکار کرا سکتی ہے. اس دنیا کے اندر کوئی بھی دوسری ایسی طاقت نہیں ہے جو بھگوان کو ہمیں ملا سکے, بھگوان کو کوئی خرید نہیں سکتا. لیکن بھگوان کہتے ہیں کہ بھگوان اور بھگوان کا نام جو ہم جپ رہے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. نام چنتا منی کرشن چیتنیہ رس وگرہ پورن شدھ نتیہ مکت ابھینو ابھینتو نام نامینو, بتاتے ہیں کہ بھگوان کا نام جو ہے وہ ایک رس وگرہ کے جیسا ہے, چیتنیہ رس وگرہ. اور بھگوان اور بھگوان کے نام میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ سیم ہے, وہ ابھن ہے. اس کے لیے ہمارا کیا کرتویہ بنتا ہے کہ ہم بھگوان کا نام لیں, بھگوان کا آشرے گرہن کریں اور باقی سب چیزوں کو چھوڑ کے اور بھکتی کو ہم دیکھیں. سبھی پنسام پرو دھرمو یتو بھکتی رسکشے اہیتو کی اپرتیہتا ییاتما سوپرسیدتی, کہ بھکتی جو ہے اس کو اگر ہم کریں گے باقی سب چیز کو چھوڑ کے تب دھیرے 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 کیا ہوتا ہے, کالین نہ اتی دیرگے نہ بھگوان وستی ہرے, کہ ہمارے ہردے میں ترنت بھگوان پرویشت ہوئیں گے اور ہم کو بھکتی دیں گے. تو یہ سب سے بڑا دھن ہے, اس سے بڑا اور کوئی دھن نہیں ہے. اور یہ ایسی تجوری ہے کہ جس کو جتنا بانٹو بڑھتی جاتی ہے, تو اگر تجوری میں سے ہم کو جیورات نکال دے تو تجوری خالی ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایسی تجوری ہے کہ آپ جمع کرتے جاؤ اور جتنا بانٹو گے اتنا بڑھے گا. تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے, وترن کرنا ہے, ہری نام کا وترن کرنا ہے, پرساد کا وترن کرنا ہے, گرنتھوں کا وترن کرنا ہے, ہر چیز کے پیچھے ہم کو جانا ہے. نہیں تو ہم ہمارے کام کرود اور لوگ میں پھنسے ہوئے ہیں, اور یہ کام کرود اور لوگ جو ہے وہ نرک جانے کے دور ہے. اس کے لیے ان سب کو چھوڑ کے اگر ہم بھکتی مارگ کو اپنائیں گے, باقی سب چیز چھوڑ دینی ہے ہم کو, اور کچھ نہیں چاہیے. تو چیتنیہ مہاپربھو نے کہا کہ میرے کو نہ تو سنیاسی بننا ہے, نہ میرے کو برہمچاری بننا ہے, نہ گرہست بننا ہے, کچھ نہیں بننا ہے. میرے کو صرف ایک چیز چاہیے, کیا چاہیے, گوپی بھرتور پد کمل اور داس داس داسانو داس. ہم لوگ بھکتی میں آتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے ہم لوگ کا یہی بھاؤ رہتا ہے, بولتے ہم لوگ داس داسانو داس ہے, ارے پربھو جی کچھ ہم کو سیوا دو پربھو جی ایسا. بعد میں تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو ہم داس داسانو داس سے داسانداس بنتے ہیں, اور پھر بعد میں اور تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو ہم داسانداس سے داس بنتے ہیں, پھر داس آ کے بڑھ جاتے ہیں, اور بعد میں تھوڑے ٹائم کے بعد ہم کو لگتا ہے ہم تو پربھو ہیں. بعد میں اور تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے ہم تو مہاپربھو ہیں. تو ایسی بھاونا ہو جاتی ہے کئی بار ہماری. تو بھکتی کے اندر بھگوان بھی ٹیسٹ لیتے ہیں, دھیرے 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 دیکھتے ہیں کہ بیٹا کتنا ٹیسٹ ہے تو دیتا ہوں. تو لیکن ہم کو پتا لگانا چاہیے کہ جو ہم پہلے دن آئے ویسے ہی ہم مینٹین کر سکے. اور اسی طرح کی ہماری پرارتھنا ہونی چاہیے بھگوان کے پاس, کہہ رہے بھگوان مجھ میں کبھی کوئی پراؤڈ نہیں آئے, کوئی گھمنڈ نہیں آئے. جیسے دریوردھن جو تھا بہت گھمنڈ تھا اس کے اندر, تو ایک بار بھیشم پتاما نے پرتیجا لی کہ میں پانڈو کا وقت کر دوں گا, پانچ بانڈ نکال لیے. تو دریوردھن نے وہ پانچ بانڈ لے لیے, بولے آپ میرے کو دے دو, آپ نے وقت تو لیا لیکن بھروسہ نہیں ہے اگر آپ کا مائنڈ چینج ہو جائے. دریوردھن کسی پر وشواس نہیں کرتا تھا, بھیشم پتاما بھی نہیں. اور ایسا بتاتے ہیں کہ دریوردھن جب ہستیناپور میں چلتا تھا تو اپنے اوپر چھتری لے کے نہیں چلتا تھا, کیوں, اپنے سے اوپر کوئی چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. بولا میرے اوپر کیسے چڑھنے والا ہے, نیچے اوپر. تو اتنا مطلب دریوردھن کا گھنت ہردے تھا اور اتنا اہنکار اور اتنا سب کچھ تھا اس کا. جب کرشن بھگوان سوئم اس سے مانگنے آئے کہ پانچ گاؤں دے دو, تو سب کچھ اس کے پاس تھا لیکن اتنا اہنکاری تھا, بولا پانچ گاؤں کیا سوئیں گے, جتنی نوک جتنی جگہ نہیں دوں گا میں اس کو. تب اس کا ستیاناش ہو گیا, اس کو مار دیا دریوردھن کو. تو اس کے لیے بھگوان جو ہے ہم تو بتا رہے ہیں کہ یہ سارے جو اوگن ہے, جو انرتھ ہمارے ہردے میں بھرے ہوئے ہیں, اس کو نکالو, باہر نکالو. کیسے کریں گے, چیتو درپن مارجنم بھو مہا داواگنی نرماپن, اس کو کلین کرو. اور کلین کر کے ہری نام کا آشرے لو, بھگوان کا آشرے لو, بھگوان کے بھکتوں کا گرو کا آشرے لو, اور سب کا آشرے لینے کے بعد اور ایک دم تڑاد اپی سنیچے نہ ترور اپی سہشنا امانینا مان دینا کیرتنی سدا ہری. اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو کہیں ہمارے پاس کچھ بھگوان کی کبھی کرپا پڑے گی اور ہم بھگوان کو پراپت کر سکیں گے. اور بھگوان کو پراپت کرنے کا ایک دم صحیح سگم طریقہ بھگوان نے بتایا ہے, وہ ایک دم آسان ہے. بھگوان نے ہم کو جیوا دی ہے اور اس جیوا سے ہمیں ہری نام کا उद्घोष करना है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की
जय।
तो हम यहीं पे इसको विराम देंगे। तो एक बार फिर से दोहराने के लिए कहता हूँ कि भक्ति सर्वोत्तम है, क्यों है, और दूसरे जो मेथड है वो समोसे को सूंघने, देखने और बोलने जैसा है, लेकिन भक्ति उसका आस्वादन कराती है। और भक्ति कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिटर्न, सेकंड कम समय में, थर्ड कम प्रयास में, और चौथे कोई योग्यता नहीं है। तो हमको कभी ऐसा सोचना चाहिए नहीं चाहिए कि मैं भक्ति करूंगा या नहीं करूंगा, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कोई योग्यता नहीं है। इसलिए भक्ति सर्वोत्तम है, वही भक्ति हमें शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अनुकंपा से हमको मिली है और हम इसको करने का प्रयास कर पा रहे हैं। इसके लिए हम अपना आभार व्यक्त करते हैं फिर से एक बार श्री प्रभुपाद जी के चरणों पर। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की
जय।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की
जय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की
जय।
सुनताई गौर प्रेमानंद।
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे गुरु भाई प्रभु को। आज इन्होंने इतनी अच्छी तरह से हमें सारी चीजें समझाया है, और अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हम सिर्फ एक प्रश्न